यशाया अध्याय 44, यशाया अध्याय 44 पद 1 और 2। परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा यों कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशुरून, मत डर। यशुरून का अर्थ है सदाचारी। यशाया अध्याय 44 पद 3 से लेकर 5 तक। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वश पर अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। वे उन मजनुओं की नाई बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूं, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूं, और अपना कुल नाम इसराइली बताएगा। परमेश्वर यहां युवा इसराइलियों के मध्य जागृति की घोषणा करता है। युवाओं के मध्य में जब वे दावा करेंगे कि मैं यहोवा का हूं और मेरा नाम याकूब है, और दूसरे कहेंगे मेरा नाम इसराइल है। यशाया अध्याय 44 पद 6। यहोवा जो इसराइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वो यूं कहता है, पिता और पुत्र। यशाया अध्याय 44 पद 6 से लेकर 13 तक। मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं, और जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया तब से कौन हुआ जो मेरी नाई उसको प्रचार करे या बताए वा मेरे लिए रचे अथवा होनहार बातें पहले ही से प्रकट करे। मत डरो और ना भयमान हो, क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। जो मूरत खोदकर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ है, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते उनसे कुछ लाभ ना होगा। उनके साक्षी ना तो आप कुछ देखते और ना कुछ जानते हैं, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। किसने देवता वो निष्फल मूरत ढली है? देख, उसके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही है, वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हो, वे डर जाएंगे, वे सब के सब लज्जित होंगे। लोहार एक बासुला अंगारों में बनाता और हथौड़ों से गढ़कर तैयार करता है, अपने बुझ बल से वो उसको बनाता है, फिर वो भूखा हो जाता है और उसका बल घटता है, वो पानी नहीं पीता और थक जाता है। बड़ाई सूत लगाकर टांकी से रेखा करता है और रंधनी से काम करता और परकार से रेखा खींचता है, वो उसका आकार और मनुष्य की सी सुंदरता बनाता है ताकि लोग उसे घर में रखें। यशाया इन लोगों द्वारा मूर्तियों बनाने के बारे में कह रहा है, वे अपने ईश्वर को मानव रूप प्रदान कर रहे थे। कुछ लोग धातुओं को पिघलाकर तो कुछ लोग लकड़ी को तरश कर अपने अपने ईश्वर का रूप प्रदान कर रहे थे। उनका उद्देश्य ये था कि इन मूर्तियों की स्थापना अपने अपने घरों में की जाए। पुरातत्व विभाग की आधुनिक खुदाई ओफेल पर्वत पर की गई है। ये पर्वत के नगर यरूशलेम गीहोन के सोते के ऊपर है। वहां उन्होंने उन मकानों को पाया है जो बाबुल की सेना अर्थात नबुकदनेज़र की सेना द्वारा नाश किए गए थे। इन मकानों में असंख्य मूर्तियां पाई गई है। ये मूर्तियां इसराइल के वंशजों ने बनाई थी। इनमें से कुछ लोहे की थी, कुछ दूसरी धातुओं की थी, कुछ लकड़ी की भी थी। उस समय के निवासियों के घरों में असंख्य मूर्तियां थी। यशिया की भविष्यवाणी आज सिद्ध होती है क्योंकि उसने इन्हीं बातों के विरुद्ध परमेश्वर का वचन पहुंचाया था। वो कहता था कि किस प्रकार एक बड़ाई अपने फुटे से नाप लेता और गोला खींचकर उसको तरसता है, तब उसे एक मनुष्य का रूप प्रदान करता, परंतु ये असंगत बात है। यहां पर इस संपूर्ण कार्य की मूर्खता का वर्णन है। यशाया अध्याय 44 पद 14 से लेकर 17 तक। वो देवदार को काटता, वो वन के वृक्षों में से जाति जाति के बांज वृक्ष चुनकर सेवता है। वो एक तूस का वृक्ष लगाता है जो वर्षा का जल पाकर बढ़ता है। तब वो मनुष्य के ईंधन के काम में आता है, वो उसमें से कुछ सुलगाकर तापता है, वो उसको जलाकर रोटी बनाता है, उसी से वो देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है, वो मूरत खुदवाकर उसके सामने प्रणाम करता है। उसका एक भाग तो वो आग में जलाता और दूसरे भाग से मांस पकाकर खाता है। वो मांस भूनकर तृप्त होता, फिर ताप कर कहता है, आह मैं गर्म हो गया, मैंने आग देखी है। और उसके बचे हुए भाग को लेकर वो एक देवता अर्थात एक मूरत खोदकर बनाता है। सब एक लकड़ी का टुकड़ा है। वे एक पेड़ को काटते हैं और उस पेड़ के एक भाग को काटकर उसमें से अपनी एक छोटी सी मूर्ति बना लेते हैं। इसी पेड़ के बचे हुए भाग को आप आग में जलाकर तापते हैं। आप कहते हैं मैंने आग देखी है। उसके एक भाग को जलाकर आप रोटी पकाते और उसके एक भाग के सामने आप उपासना करते और कहते, ओ मेरा परमेश्वर। ये कैसी असंगत और तर्कहीन बात है। परमेश्वर इसी विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित करता है। मनुष्य अपने ईश्वर की सृष्टि करके कैसी मूर्खता का काम करता है। वो परमेश्वर को अपना रूप प्रदान करता है। पद 16 में लिखा है कि इसी के एक भाग को वो जलाता है, उसके एक भाग पर वो मांस भूनता है और तृप्त होता है, वो उसी से आग तपता है और कहता है, आह मैं गर्म हो गया, वो कहता है मैंने आग तपी है। यशाया अध्याय 44 पद 17। तब वो उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता और उससे प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले क्योंकि तू मेरा देवता है। वे कुछ नहीं जानते ना कुछ समझ रखते हैं। और कैसी मूर्खता। यशाया अध्याय 44 पद 18। क्योंकि उनकी आंखें ऐसी मूंदी गई है कि वे देख नहीं सकते और उनकी बुद्धि ऐसी कि वे बूझ नहीं सकते। ये एक त्रासदी है कि मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते करते इतना दूर निकल जाता है कि परमेश्वर उसे अपनी भूल के प्रति अंधापन प्रदान कर देता है। वो उसकी आंखों को बंद कर देता है और वो देखने में असमर्थ हो जाता है। यही कारण है कि यीशु ने भी वही कहा जो यशया ने कहा था, वे कुछ नहीं जानते ना कुछ समझ रखते हैं। मनुष्य के लिए ये अति संभव है कि वो प्रभु का इतना अधिक त्याग कर दे कि वो अपने जीवन में एक ऐसी स्थिति में आ जाता है जहां विश्वास करना उसके लिए असंभव हो जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद 38 में ये नहीं लिखा है, इसलिए कि वे विश्वास नहीं रखते, परंतु यह कि यूहन्ना 12 अध्याय 39 और 40 पद, इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशया ने फिर भी कहा, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर किया है। समय जिसे हम नहीं जानते, एक रेखा जिसे हम नहीं जानते कहां है, जो मनुष्य के भाग्य में दुख और निराशा ले आती है। ये वो रेखा है जिसे मनुष्य देख नहीं सकता है। जब मनुष्य उसे पार कर लेता है, तब परमेश्वर और उसके प्रेम की शपथ सब कुछ समाप्त हो जाती है। तब मनुष्य के लिए कभी नहीं लौटने की स्थिति आ जाती है। तब परमेश्वर उसे अंधा होने और भूल करने के लिए छोड़ देता है। वो उसे उसकी भूल के सुपुर्द करके जाने देता है और वे अब विश्वास नहीं रख सकते। ये निश्चय ही बहुत संकटकालीन अवस्था होती है। वे इसे समझ नहीं पाते हैं। नहीं, ये अवस्था लंबे समय तक नहीं है। यशाया 44 अध्याय पद 19। कोई इस पर ध्यान नहीं करता और ना किसी को इतना ज्ञान वो समझ रहती है कि कह सके, उसका एक भाग तो मैंने जला दिया और उसके कोयलों पर रोटी बनाई और मांस भून कर खाया है, फिर क्या मैं उसके बचे हुए भाग को घिनौनी वस्तु बनाऊं? क्या मैं काट को प्रमाण करूं? प्रकृति निश्चय ही परमेश्वर को मनुष्य पर प्रकट करती है। भजन संहिता 19 एक से तीन पद। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है, परंतु प्रकृति को देखने का एक तर्कहीन तरीका है और एक तर्क संगत तरीका है। एक पेड़ को देखने की एक तर्क संगत विधि है, उसके फूलों की सराहना, उसकी सुंदरता को सराहना, किसी पेड़ की प्रसन्न क्षमता की सराहना, उसके बीज के विकास की सराहना, उसके बीज का भूमि में गिरना और उसका उगना, बीजों का विसर्जन, उनके रोएं या कांटे जिनके द्वारा पेड़ अपनी उपज विकसित करता और फैलाता है। इन सब अच्छी बातों को देखकर कहें, ओ ये सब परमेश्वर है। नहीं नहीं, वो परमेश्वर नहीं है, वो पेड़ परमेश्वर नहीं है, ये कहना मूर्खता है। पेड़ को देखने का अर्थपूर्ण तरीका है कि उसे देखें, उसकी सराहना करें, उसके सौंदर्य की प्रशंसा करें और कहें, ये परमेश्वर के हाथों के काम है, ये परमेश्वर की सृष्टि है। परमेश्वर की उपासना करें जिसे परमेश्वर ने बनाया है, ना कि पेड़ की। परंतु अनेक मनुष्य पेड़ तक ही सीमित रह जाते हैं और वे पेड़ के पार नहीं जा पाते। यही कारण है कि पौलुस कहता है, रोमियो 1:25 पद, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है, आमीन। ये मनुष्यों की एक आम भूल है कि वे सृष्टि में ही उलझकर रह जाते हैं और सृष्टिकर्ता की अपेक्षा सृष्टि की उपासना और सेवा करने लगते हैं, जबकि सृष्टि तो हमें सृष्टिकर्ता का संकेत देती है। परंतु मनुष्य सृष्टि में फंसकर सृष्टिकर्ता की अपेक्षा सृष्टि की ही उपासना करने लगता है। तो भी परमेश्वर कहता है कि उनमें कोई समझ नहीं है। इसी पेड़ के एक भाग से मैंने लकड़ी जलाकर तापा, एक भाग पर मैंने मांस भूना, एक भाग पर मैंने रोटी पकाई और शेष भाग को दंडवत करके कहता हूं, तू मेरा ईश्वर है, मुझे मुक्ति दिला। क्या मैं काट को प्रणाम करूं? यशाया अध्याय 44 पद 20 से लेकर 25 तक। वो राग खाता है, भरमाई हुई बुद्धि के कारण वो भटकाया गया है और वो ना अपने को बचा सकता और ना ये कह सकता है, क्या मेरे दहने हाथ में मिथ्या नहीं? हे याकूब, हे इसराइल, इन बातों को स्मरण कर। तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इसराइल, तू मेरा दास है, मैं तुझको ना बिसराऊंगा। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हे आकाश, ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि यहोवा ने ये काम किया है। हे पृथ्वी के गहरे स्थानों, जय जयकार करो। हे पहाड़ों, हे वन के सब वृक्षों, गला खोलकर ऊंचे स्वर से गाओ, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है और इसराइल में महिमावान होगा। यहोवा तेरा उद्धारकर्ता, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यूं कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूं, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बावला कर देता हूं, जो बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूं। आपको जो करना है वो ये है कि आप 1890 की विज्ञान की पुस्तकें पढ़ें, उस युग के मनुष्य का ज्ञान देखिए और आज के युग की विज्ञान की पुस्तकें पढ़िए। क्या आप जानते हैं कि जब नहाने के पात्र अमेरिका में प्रयोग किए जाने लगे, तब उनका प्रयोग मना कर दिया गया था। अनेक नगरों में उन्हें वर्जित कर दिया गया था। डॉक्टरों का कहना था कि रोज नहाने से नुकसान पहुंचता है। उन खतरों और स्वास्थ्य संकटों के कारण नहाने के टबों को वर्जित कर दिया गया था, क्योंकि अधिक नहाने के विरुद्ध डॉक्टर चेतावनी दे रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे पौलुस कहता है, रोमियो पहला अध्याय 22 पद, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। जब कभी भी मनुष्य परमेश्वर को अपने जीवन या अपने विचारों से दूर रख देता है, तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख बन जाता है। बाइबल कहती है, भजन संहिता 14:1 पद, मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। जो बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता है, मनुष्य के ज्ञान को। यशाया अध्याय 44 पद 26 से लेकर 28 तक। और अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूं, जो यरूशलेम के विषय कहता है, वो फिर बसाई जाएगी, और यहूदा के नगरों के विषय, वे फिर बनाए जाएंगे, और मैं उनके खंडरों को सुधारूंगा। जो गहरे जल से कहता है, तू सूख जा, मैं तेरी नदियों को सुखाऊंगा। जो कुसरू के विषय में कहता है, मैं परमेश्वर हूं, केवल मैं ही हूं। यहां वो उस व्यक्ति कुसरू का नाम तक ले रहा है, जिसका जन्म अभी 150 वर्ष बाद होना था। अब परमेश्वर सुनिश्चित करता है, उसने कहा, यशाया अध्याय 44 पद 28, वो मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है, वो बसाई जाएगी और मंदिर के विषय की तेरी नेव डाली जाएगी।